हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 36, 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानस राजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा। स्मरतव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चे, सर्वे विद्धि निषेदाशु, एतयोरेव किंकरः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, तत्राग्रह न परः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं, ततोजेव मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके, भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की इच्छा हो। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाने के विषय में श्रवण किया, तो फिर उन्होंने भी निश्चय किया कि मुझे भी अब वापस से चले जाना चाहिए इस भौतिक जगत में, अब मेरे लिए रहने का कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार कुंती महारानी ने भी यही सोचा कि अब मुझे क्या करना है। एक भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और एकांत भक्तया भगवत अदुक्षजे, अदुक्षित भगवान की एकांत भक्ति में लीन होकर निवेशितात्मो परिणाम संस्कृत है, और इस संसार सागर से अपने मनोयोग से भगवान की भक्ति में लीन होकर संसार के सागर से वो मुक्त हो गए। और इस तरह से जब उसके बाद सूत गोस्वामी ने हमें बताया कि वास्तव में भगवान का आना और जाना एक जादूगर की जादूगिरी की तरह है, और जिस तरह भगवान विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं, पृथ्वी का रूप पृथ्वी का भार हल्का करने के बाद वो पुनः अपना स्वरूप को समेटते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह सूर्य एक जगह से खत्म मतलब अस्त हो जाता है तो दूसरी जगह वापस उदय होता है, तो भगवान के स्वरूप सारे शाश्वत हैं। और लेकिन भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ मैं आता हूँ। और क्यों आता हूँ? धर्म की रक्षा करने की। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन जब भगवान चले गए इस भौतिक जगत में, जब भगवान सशरीर थे, मतलब भगवान जब इस भौतिक जगत में लीला कर रहे थे, तब इस संसार में आनंद था। मतलब क्योंकि भगवान जब तक थे तो कलयुग आया नहीं था, कलयुग के थोड़े थोड़े ऐसे महसूस हो रहे थे, कलयुग का थोड़ा थोड़ा प्राकट्य तो हो गया था, परंतु पूरी तरह से कलयुग आया नहीं था क्योंकि भगवान यहाँ पर थे। लेकिन जब भगवान यहाँ से चले गए पृथ्वी लोक से, तो फिर अशुभ परिस्थितियाँ, कलयुग का आवागमन हो गया और अशुभ परिस्थितियाँ होने लगी। उसके विषय में आज सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं। वे कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवानी मां मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन्वर्तत। यदा मुकुंदो भगवानी मां मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथ तदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसा अभद्र हेतु कलिरन् ववर्तत। यदा मुकुंद भगवान इमाम महीम, यदा मना जब, मुकुंद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं भौतिक संसार से और भौतिक संसार के क्लेशों से, मुक्ति प्रदान करने वाले जो मुकुंद भगवान हैं, इमाम महीम इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी को जाहो, जब वो इस महीम को, इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए स्वतन्वा अपने इस शरीर के साथ। ऐसा नहीं है कि जैसे हम भौतिक, जब हमारी जैसे भौतिक लोग की मृत्यु होती है, भौतिक शरीर जो है वो यहीं पर रह जाता है, आत्मा ऊपर चली जाती है, क्योंकि भगवान की आत्मा में और भगवान के शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जहो स्वतन्वा, भगवान अपने शरीर के साथ ही अपने धाम में चले गए, श्रवणीय सत्कथा, श्रवण करने योग्य है उनके विषय में। श्रवण करना जो है, वास्तव में भगवान के विषय में ही श्रवण करना चाहिए। तो जो उनके विषय में आज कथा, श्रवणीय सत्कथा, उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जो है वो भगवान के विषय में बता रहा है और याद कर रहा है भगवान के उपदेश को, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं और कुंती महारानी, तो उनको पता है कि भगवान उनके लिए सब कुछ ऐसा ही है, उनको ऐसा लग रहा है। अर्जुन को भी पुनः शांति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान जो है वो भले ही उनका मतलब भौतिक पृथ्वी पर मुझे दिख रहे नहीं है, परंतु वो सदैव मेरे साथ है। उसी प्रकार कुंती महाराज सब जानते हैं कि भगवान का आना और जाना सूर्य की तरह है, लेकिन तदा हरेवा प्रतिबद्ध चेतसा, जो तदा मतलब उस समय, अहेरवा मतलब उसी दिन से, अप्रतिबद्ध चेतसा, जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं थे, जिनकी बुद्धि इतनी पर्याप्त नहीं थी, जो भगवान के विषय में सही तरह से नहीं जान रहे थे, उनके लिए अभद्र हेतु, सारे दुर्भाग्य हर जगह पर उनके लिए दुर्भाग्य शुरू हो गए, जिनका लिंक मतलब भगवान से छूट गया, जो भगवान के विषय में नहीं श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के विषय में सुन नहीं रहे, जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, उनके लिए सब दुर्भाग्य के लक्षण शुरू हो गए। कली अन्ववर्तता, यानी कलयुग पूर्णतया प्रकट हो गया। पहले भी दिख रहा था, थोड़े थोड़े तो अंश थे, लेकिन अब क्योंकि वो बिल्कुल अभद्र हो गए, भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को और भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो कलयुग जो है वो पूर्णतया इस भौतिक जगत में आ गया, प्रकट हो गया उनको क्लेश देने के लिए। अनुवाद: जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपने उसी रूप में छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले से ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियों उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग पूर्णतया ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने को भगवान की देखरेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के ही बाद हुआ था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव ना दिखा सका। लेकिन जब भगवान ने इस तरह लोक को अपने ही दिव्य शरीर में छोड़ा, तो शरीर के छोड़ते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे जिस प्रकार द्वारिका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे, और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस तरह से भगवान के प्रयाण की कल्पना की थी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए जिस तरह अस्त होने पर सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कलयुग तो उसी समय आ गया था जब कुरुक्षेत्र की युद्ध में युद्ध भूमि में युद्ध हुआ था, उसी समय कलयुग आगमन हो गया था, परंतु क्योंकि भगवान इस तरह धाम पर थे, इसलिए कलयुग के जो अपशकुन है वो अभी तक दिख नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने इस धराधाम से वापस चले गए, तो फिर उनके लिए जो अल्पज्ञ हैं, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बात बताई और सूत गोस्वामी ने भी कहा कि तदा हरेवा प्रतिबद्ध चेतसाम, जो अभद्ध चेतसाम है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उन्हीं पर केवल कलयुग का प्रभाव पड़ता है। और शास्त्र कहता है अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम को अर्पित कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो साक्षात कृष्ण वहां पर होते हैं, और जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं चलता। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के उपदेश को, भगवान का नाम गुण लीलाएं उपदेश कुछ भिन्न नहीं है, उनमें साक्षात भगवान जितना ही पावर है, जो जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है, जहां पर भगवान की सेवा होती है, अर्चना होती है, वहां पर कलयुग अपना प्रभाव नहीं चला सकता है। तो हमें अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के सानिध्य में रहें। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम् बुध पुरी च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनात् यधर्मचक्रम् गमनाय पर्यधात् युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम् बुध पुरी च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनात् यदर्मचक्रम् गमनाय पर्यधात् युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम् बुध युधिष्ठिर यानी महाराज युधिष्ठिर तत् परिसर्पणम् तत् मना उस परिसर्पणम् मना विस्तार को कि कलयुग किस तरह से आ रहा है बुध वो पहले से पूर्ण अनुभव कर हमने पढ़ा था ना पहले युधिष्ठिर महाराज को कैसे अपशकुन दिख रहे थे तो वो सब इस अपशकुनों को कलयुग के आगमन को पहले से अनुभव कर चुके थे पूरे यानी अपनी राजधानी में पूरे च राष्ट्रीय गृहे तथात्मनि पूरे मतलब राजधानी में राष्ट्रीय मतलब राज्य में गृह मतलब गृह में आत्मनि यानी अपने में हर जगह पे उसे कलयुग का प्रभाव दिख रहा था क्योंकि वो देख रहे थे कि कलयुग किस तरह से आ गया है किस तरह से अपशकुन अपने फैला रहा है। और आगे कहते हैं विभाव्य लोभान्वित जिह्म हंसना विभाव्य यानी देखा था लोभाय क्योंकि जब पहले कलयुग का आगमन नहीं हुआ था तब लोगों के मन में इतना लालच नहीं था विभाव या लोभा उन्होंने लालच देखा था प्रति हर कोई आज हम देखते हैं हर किसी के हृदय में लालच होता है मुझे और प्राप्त करना है ये लोगों को भले कितना ही कष्ट मिले दुख मिले लेकिन मेरी इच्छा मेरी लालसा पूरी होनी चाहिए। अनृत यानी लोभान्वित नृत्य अनृत का मतलब होता है हर कोई झूठ बोलना चाहता है हर कोई ये न के न प्रकार एक दूसरे को ठगना चाहते हैं झूठ देखो कलयुग में कितना झूठ है जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है मतलब कोई वजह भी नहीं होती फिर भी हम झूठ बोलते हैं कोई वजह नहीं होगी मोबाइल हमारे हाथ में होता है मोबाइल सबसे ज्यादा झूठ बुलाता है रास्ते में होंगे अभी तक निकले भी नहीं होंगे कोई फोन करेगा हाँ कहाँ पहुंचे बोले बस पहुंचने वाला हूँ बस अभी आधे घंटे में पहुंचने वाला हूँ रास्ते में मतलब इतना झूठ बोलेंगे अगर सच बोलेंगे तो क्या वो थप्पड़ आके मारेगा आपको नहीं लेकिन फिर भी ये कलयुग का प्रभाव है झूठ बुलाता है हर किसी से लालच उत्पन्न हो रहा है और जिह्म यानी कुटिल नीति होती है कूटनीति करते हैं सब एक दूसरे के साथ के उसको हराने की साजिशें कर रहे होते हैं और हिंसन आदि हिंसा करते हैं पशुओं को मार के खाते हैं एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं अधर्म करते हैं अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात अगर अधर्म चक्रम मतलब छल करते हैं एक दूसरे का धोखा करते हैं गमनाय मतलब प्रस्थान के लिए पर्यधात तद अनुसार वस्त्र धारण किए फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे कलयुग में रहना तो अच्छा नहीं है और ऐसे कलयुग में रहकर क्या लाभ अब कृष्ण भी नहीं रहे तो फिर मुझे अभी यहाँ से गमन करना चाहिए प्रस्थान करना चाहिए और इस तरह से उन्होंने पर्यधात मतलब ऐसे ही वस्त्र धारण किए जैसे हम वन में जाते हैं तो राजसीय वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमने देखा जब श्री राम को वनवास मिला था 14 साल के लिए तब भी कैकेयी ने उन्हें यही कहा था कि आप अब वनवास में जा रहे हो तो ये राजसी मुकुट और ये राजसी वस्त्र पहन के क्यों जा रहे हो आपको वनवासी का ड्रेस पहनना चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी पर्यदात उसी के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं कि अब मुझे वनवास में जाना चाहिए। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर कलयुग के प्रभाव को समझ गए जिसकी विशेषता बढ़ता लालच असत्य भाषण धोखा देना तथा सारी राजधानी राज्य घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य है अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण किए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित होता है कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी इसे 427,000 वर्ष और रहना है। ऊपर कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख हुआ है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि, उनका पहले से ही बोलबाला है और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या न हो ले। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए, जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह कलयुग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त थे, अतएव उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। क्योंकि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, अतएव वे भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके अतिरिक्त आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरक्त होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नव युवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न निकाल दे। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वेच्छा वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त यानी रिटायर वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि इसके पूर्व के मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग की टोटल उम्र है 432,000 साल, जिसमें से 5,000 साल तो गुजर गए हैं, परंतु इस कलयुग को हमें 427,000 साल और भी भुगतना है। और कलयुग के जो ये लक्षण बताए गए हैं, लोभ, लालच, असत्य, छल, हिंसा, ये सब दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। पता नहीं आगे कलयुग हमें क्या दिखाएगा, लेकिन फिर भी एक बात का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन पर भक्तों पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत के लोगों को दिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने हम सबको शिक्षा देने के लिए कि मृत्यु आकर आपको घसीट कर इस भौतिक शरीर से निकाल लेके जाए, उससे पहले भौतिक आसक्ति को समाप्त करके छोड़ देना चाहिए सब कुछ। जब देखें कि घर में अब कोई नव युवक तैयार हो गया है गृहस्थ आश्रम को संभालने के लिए, तो निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन आज का समाज हम देखते हैं, जितना जितना बड़े होते हैं, पोतों में, पोतियों में, उनके बच्चों में आसक्ति बढ़ती जाती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है, एक दिन यमराज आ जाता है, आसक्ति इन्हीं के अंदर पड़ी रहती है, तो उसी घर में कभी छिपकली बनकर, कभी कॉकरोच बनकर रेंगते रहते हैं। यदि हमें अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मृत्यु आए उससे पहले हमें भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को पुनः निर्माण करना है, उसके लिए भौतिक आसक्ति को समाप्त करना पड़ेगा। तो यही शिक्षा युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं अपने सारे राज्य को। इन्होंने हस्तिनापुर का राज्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था और सारे राज्य को छोड़कर वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं स्वेच्छा से। श्री प्रभुपाद जी बोलते हम सबको, जो रिटायर्ड हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, राजनेता हैं, उन सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो भी कमाते हैं, वो एक समय तक उसको उसका भोग करके फिर हमें इन सबसे निवृत्त होना चाहिए और भगवत भक्ति के लिए पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आगे सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर श्लोक बता रहे हैं कि उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने वन जाने से पहले क्या किया। स्वराट पौत्रम विनयीनम आत्मना सुसमम गुणै
तोयनि व्यापतिं भूमे अव्यशिञ्चत् गजाः वये स्वराट् पौत्रं विनयीनम् आत्मना सुसमं गुणे तोयनि व्यापतिं भूमे अव्यशिञ्चत् गजाः वये स्वराट् पौत्रं स्वराट् मतलब सम्राट पौत्र मतलब पुत्र के लड़के पौत्र जैसे हमें होता है ना पोता उसको बोलते हैं पौत्रम तो युधिष्ठिर महाराज के पोते कौन थे उनका पुत्र कौन था उनके सारे पुत्रों की हत्या हो गई थी लेकिन अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु उनके पुत्र परीक्षित क्योंकि वो अर्जुन के पौत्र थे तो फिर युधिष्ठिर महाराज के भी पौत्र हुए तो परीक्षित महाराज के बारे में कह रहे हैं कि सम्राट ने पौत्रम अपने पोते को विनयीनम मतलब जो भली भांति प्रशिक्षित था। यहाँ पर विनयीनम शब्द हमें ये बता रहा है कि किसी अशिक्षित व्यक्ति को राज्य नहीं दिया जा सकता, उसे भली भांति प्रशिक्षित पहले किया जाता है। और कितने शिक्षित थे वो कह रहे हैं आत्मना सुसमम गुणे, आत्मना मतलब उतने ही जितने कि महाराज युधिष्ठिर जितने गुणवान थे, आत्मना यानी अपने सुसमम सभी प्रकार से समान गुण उनके अंदर सभी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के जितने ही गुण थे। और तो ये निव्या तो मतलब समुद्र से घिरा हुआ, ये जो तो हम कहते हैं समुद्र को और निव्या मतलब घिरा हुआ, ये जो राजधानी थी उस वो पूरी राजधानी पतिम यानी स्वामी को भूमि यानी भूमि के इतनी बड़ी राजधानी के अभ्यशिंचित यानी सिंहासन पर बिठाया। किस कौन सी राजधानी गजावये, गजावे किसको बोलते हैं हस्तिनापुर की जो राजधानी है उसमें अपने पौत्र युधिष्ठिर महाराज जो कि भली भांति प्रशिक्षित थे उनके समान ही गुणवान थे उनको उस राजधानी के मतलब सीट पर बिठाया राजा बनाया और उसके बाद खुद जाने के लिए तैयार हुए। अनुवाद देखिए तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान योग्य था। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को जो उन्हीं के समान योग्य था नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज सिंहासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयी नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है जो महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा संसार का सम्राट क्यों माना जाता था, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी कि जो हस्तिनापुर का राजा था वही सम्राट माना जाता था। स्वराट बोला, सम्राट इसलिए माना जाता था पूरे संसार का क्योंकि वो किस तरह प्रशिक्षित होता था, क्योंकि वो पूरी तरह से विनयीनम हर चीज में वो बहुत अच्छे तरीके से उसको शिक्षा दी जाती थी कि किस तरह से राजा के कर्तव्य हैं, कैसे अपने प्रजा को सुखी रखना है, कैसे सत्यवादी बनना है, कैसे धर्मवादी बनना है, उस राजा को पूरी तरह से शिक्षा दी जाती थी। इसलिए वो राजा के अंडर में होते थे बाकी सारे जितने भी कंट्रीज होते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग खुश थे, सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण पर्याप्त प्राकृतिक उपज था यथा अन्न फल दुग्ध औषधियां रत्न खनिज तथा जनता की आवश्यक वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली आपदाओं से मुक्त थे क्योंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतुष्ट नहीं था। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते नहीं थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासन तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है, यही विशेष अधिकार है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि उस समय राजा इतने अच्छे तरीके से राज्य करता था कि प्रकृति जो है वो प्रसन्न होकर प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज इत्यादि देती थी। पूरी प्रकृति संतुष्ट होती थी, और जब प्रकृति सब वस्तुएं देती थी तो क्या होता था, सारे लोग खुश होते थे। इसके साथ साथ आपत्तियां जो आती हैं, कभी भूकंप आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, ये सब आपत्तियां और विपदाएं, ये सब क्योंकि राजा जितना अच्छा होता है ना, सद्धर्म धर्म वाला राजा होता है ना, धर्मी होता है, वो राजा के कारण प्रकृति जो है वो सारे प्रजा को सुखी रखती है। तो उस समय राजा बहुत ज्यादा धर्म परायण होते थे, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे, और सारे जितने भी लोग होते थे उनको जीवन का लक्ष्य पता होता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एटलीस्ट भगवान को प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिक विकास होता था। तो और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये युग ऐसा हो गया है कि खाली जो नेता होते हैं वो अपने आनंद का सोचते हैं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब बढ़ गया है, तो आज हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। नहीं, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वो जो कोई भी ग्रहण करता है उसके अंदर से अपवित्रता समाप्त हो जाती है। तो इस युग में भी जो संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उनका वास्तविक अधिकार है। वो आज भी भगवान का नाम लेकर, भगवान की कथाओं को श्रवण करके, भगवान की शरण लेकर वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने भाग्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जितना सिंसियर होंगे, जितना सीरियस होंगे, भगवान उतनी हमारी सहायता करेंगे। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी, मथुरायां तथा वज्रम शूरसेना पतिम ततः प्रजापत्यां निरुप्येष्टिम अग्निन्नपि परीश्वरः। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेना पतिम ततः प्रजापत्यां निरुप्येष्टिम अग्निन्नपि वरीश्वरः। मथुरायां तथा वज्र, मथुरायां मतलब अब क्योंकि सब मथुरा की भी सब मृत्यु हो गई थी सबकी, तो फिर जो वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं, उन्होंने अनिरुद्ध शूरसेना पतिम तथा, शूरसेन जो राजा थे उनके तथा उसके पश्चात मतलब उनके जाने के बाद प्रजापत्याम, प्रजापति यज्ञ निरूप्य संपन्न करके उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया, और इष्टम अग्नि, लक्ष्य क्या था, अग्नि को अपिबत अपने में स्थापित किया, ईश्वर समर्थ। ये कैसे किया था, अनुवाद देखिए, तब उन्होंने अनिरुद्ध यानी भगवान के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि स्थापित की। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा कर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण किया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है। मानव जीवन का शुभारंभ मतलब अगर वर्णाश्रम धर्म को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पशु जीवन बिता रहे हैं। वास्तव में मनुष्य बनने के लिए आवश्यक है कि हम वर्ण और आश्रम के धर्म को निभाएं। ये शुरुआत है। और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे, अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को चार वृत्ति विभाग तथा चार आश्रम में विभाजित करती है। जीव के चार आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। ये चारों सबों के द्वारा पालनीय हैं, चाहे उसका वृत्ति पर्क विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरक्त नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श यादा थे, अतएव वे स्वेच्छा से प्रशासक जीवन से विरक्त हो गए, जिससे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करें कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम 15-20 वर्ष पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बहुत ही सुंदर सीख है। श्रीला प्रभुपाद जी हम सबके लिए बहुत ही सुंदर सीख बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन के अंतिम व्यवस्था के कम से कम 15-20 वर्ष तक पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सकें। जो आखिरी के दिन है, कम से कम बचपन में हम स्टडी कर रहे होते हैं और मतलब यही लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टडी करनी है। फिर यंग होने के बाद गृहस्थ जीवन में हमें बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के बाद जो बाद में हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अवश्य ऐसा समय निकालना चाहिए, अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि अंतिम समय हमारा पूरा का पूरा भगवान की भक्ति में लग सके। क्योंकि वास्तव में जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम किस तरह से सोफिस्टिकेटेड लाइफ गुजारते हैं, ये नहीं है कि कैसे ज्यादा धन अर्जित करके अपनी जिंदगी में अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जीवन की चरम सिद्धि है भगवान को प्राप्त करना, और उसके लिए भगवान को समय अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। और श्रीला प्रभुपाद जी हमें यहाँ सावधान कर रहे हैं कि यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए। हम देख रहे हैं कि आजकल संसार में सब लोग बस ज्यादा से ज्यादा अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, ज्यादा से ज्यादा भौतिक भोग और सकाम कर्म करते रहते हैं, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें इन भौतिक इंद्रिय भोग की आसक्ति से रहित होकर भगवान के अंदर अपना मन लगाना पड़ेगा, भगवान से अपने संबंध को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन भौतिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति लगी रहेगी तब तक भवबंधन से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि वास्तव में वो आत्मघात नहीं होता है। हम बोलते हैं ना हम आत्महत्या करते हैं, उस समय आत्मा की हत्या नहीं हो रही होती, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। उस समय केवल शरीर की हत्या हो रही है। आत्मा की हत्या तो तब हो रही है जब जीव भगवत प्राप्ति के लिए वास्तविक लक्ष्य के लिए प्रयत्न नहीं करता बल्कि केवल भौतिक भोगों में ही अपने जीवन को गुजारता रहता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आत्मघाती नीति है। इससे हम अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए विवश कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में कृष्ण की भक्ति करके भगवान के धाम जाने की का कार्य नहीं करते हैं, भगवान धाम जाने के लिए अपने भौतिक आसक्ति को समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी आत्मा का हनन कर रहे होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव को आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए बल्कि भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को निर्माण करने के कार्य करने चाहिए और भौतिक आसक्ति को समाप्त करना चाहिए। कैसे संभव है? तो जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो धीरे धीरे ये भौतिक आसक्ति हृदय से समाप्त हो जाती है और हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।